धवला पुस्तक ग्यारहवीं लेक्चर नंबर 15 ओ
नमः सिद्धेभ्य
ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं कम्मठजनियवेण वहिसमुत्तिन्नये जिनेन मिहुं वेयण महाहि आरं विविहि आरं परुवेमुः।
आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें अपना भी चतुर्थ खंड चल रहा है वेदना नामक, और अपना वेदना का काल विधान उसकी अपनी प्ररूपना चल रही थी। पेज नंबर 109 पर हम आ गए हैं। थोड़ा अपना विषय देख के हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो काल की बात हो रही थी। पहले हमने उत्कृष्ट काल और फिर जघन्य काल देखा है। उत्कृष्ट काल किसको होता है? किसी कर्म का। यहाँ तो ज्ञानवरण की बात थी। मिथ्या दृष्टि है, संगी पंचेंद्रिय है, सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त हुआ है, हाँ साकार है, जागृत है, और वो सर्व संक्लिष्ट परिणाम वाला है। यह थोड़े कम मध्यम, ईशत मध्यम कहते उसको। ऐसे जो जीव के द्वारा ये ज्ञानावरण का उत्कृष्ट बंध हो सकता है, यानी वो सर्व संक्लिष्ट वाले से भी और कुछ कम वाले से भी। उसके बाद उन्होंने अनुत्कृष्ट के एक एक समय से कम वाले बंध की अपेक्षा कहाँ से उत्कृष्ट से लेकर अंत कोड़ाकुड़ी तक एक एक समय बंध कम किया है, उस अपेक्षा से अलग अलग स्थान देखे। बंध की अपेक्षा जब स्थान देखते हैं तो सत्ता उतनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तब जाके उतना होगा। अगर सत्ता से बंध कम हुआ, मान लेते सत्ता में पड़ा है, नहीं नहीं मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है कम बंधा, ऐसा हो सकता है ना, हाँ, तो उसका सत्व उतना ही कहलाएगा जितना वो सत्व है। बंध की अपेक्षा जब देखते तो सत्ता के समान कहो या सत्ता से कम जब बंध होगा तब ऐसा होगा। इस तरह से हमने अनुत्कृष्ट स्थान संगी पंचेंद्री की अपेक्षा देखे थे। फिर अनुत्कृष्ट स्थान कैसे देखना है? कोई भी तरह जीव, भले वो पंचेंद्री हो, असंगी हो, द्विंद्रियादि हो, क्योंकि उसमें जाने के बाद यानी कम स्थिति बंध बांधा है या उसका स्थिति थोड़ा घट गया है, ऐसा जीव एकेंद्रिय में उत्पन्न होता है। तो एकेंद्रिय उत्पन्न होने के बाद अंत कोड़ाकुड़ी तक जहाँ से हमने देखा था उसमें एक समय गला, दो समय गला, इस तरह से हम वहां पर भी देखते हैं। वहां तो स्थिति कांडक घात होते रहते हैं। तो स्थिति कांडक घात में एक फाली दूसरी फाली, उसमें तो एक एक समय घटेगा ही घटेगा, और जब अंतिम फाली गिरते तो हाँ कांडक, परंतु बाय दैट टाइम अन्य किसी जीव को अधिक स्थिति के साथ उतना ही हो सकता है। यानी वो सारे ही हमने स्थान देखे थे एक इंद्रिय की जो बंध, यानी उसकी जो सत्व मिनिमम सत्व पाया जाता है वहां तक हमने देखे थे स्थान। क्या चौथे के बाद? परंतु यहाँ तो यहाँ बंध ही नहीं है ज्ञानावरण का, दसवें तक ही है। कितना बनता है? साता वेदनी बिना स्थिति का बनता है, बिना स्थिति का। हाँ, ये जब से समय दर्शन हो जाता है अंत कोड़ाकोड़ी का बंध, तो सत्व से कम ही बंध होता है, सत्व से अधिक बंध नहीं होता समय को होने के बाद, ये नियम है। चौथे गुणस्थान से उसका बंध अंत कोड़ाकोड़ी से कम ही होगा। अब यहाँ हम ये जो अलग अलग स्थान देख रहे थे, अनुत्कृष्ट स्थान हमने सब देखे थे, उसमें पुनरुक्त पुनरुक्त वगैरह वगैरह उन्होंने बातें देखी थी। देखो ये यानी वो सिद्धि कांड की अपेक्षा वो सारे स्थान बताए थे। अब हम लंबे काल तक हाँ होते ही रहते होते ही रहते हैं, तो उसकी जब मिनिमम सत्ता इतनी हो जाए तब तक के सारे स्थान यहाँ हो सकते हैं, और वो अलग अलग जीवन की अपेक्षा उन्होंने वो घटित करके दिखाए भी। अभी उसके बाद वो जगन्य की बात देखी थी हमने, यानी वो सारे उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट की बात देखी। 108 पेज पर देखो हम आए हैं 109 पर, 108 में नीचे से दूसरा पैराग्राफ है ना, तो जो इन स्थानों के जीव स्वामी उनकी 6 अनुयोगियों के द्वारा प्ररूप ना करते इस तरह से लिखा था, यथा पहले त्रस जीवों का आश्रय करके प्ररूप ना करने पर, यानी वो जगह प्ररूपणा कहेंगे तो जगन्य स्थान में जीव है, जगह यानी उत्कृष्ट तक सभी स्थानों में जीव है ऐसा बताएंगे। अब यहाँ जघन्य स्थान की बात है, तो जघन्य किसके होता है, ज्ञानावरण का जघन्य कब होगा अभी सीखे ना आप, शपक श्रेणी में काल की अपेक्षा जघन्य कितना होगा, अंतिम एक निशेक काल देख रहे हम और बंधे नहीं देख रहे है ना। देखो हाँ क्षपक श्रेणी में अंतिम एक निषेक रहेगा, उसमें परमाणु कितने उसकी बात नहीं, परमाणु मैक्सिमम है उसमें, एक निषेक बाकी रहेगा वो खेरेगा तब जाके जीव 13वें गुण स्थान में पहुंचेगा, तो जघन्य उसके होगा एक निषेक एक समय वाला, फिर उसके पूर्व समय में 2 समय वाला होगा, 3 समय वाला, 4 समय वाला, ऐसे हमने देखा था अंतर्मूर्त वाला, यानी उसके पहले वो अंतिम स्थिति कांडक गिरता है उतना स्थिति वाला, यानी उसमें सांतर निरंतर स्थान हो गए, यानी जब जब किसी कांडक की अंतिम फाली गिरती है तो एकदम सत्व घटता है, तो वैसे वहां स्थान हो गए। देखो हम नीचे से फिर पढ़ते 108 पेज पर नीचे से तीसरी लाइन, वहां से ओग जगन्य स्थान में, ओग जगन्य नहीं वो शपक श्रेणी वाला 12वें गुण स्थान का अंतिम समय, वो स्वामित्व में आएगी प्ररूपणा परंत पहले में पहले ये बता रहे हैं क्षपक श्रेणी अंतिम समय है, वहां एक ही निषेक बाकी है, तो उसमें जीव कितने पाए जाते हैं, तो जघन्य से 1 और उत्कर्ष से 108 जीव पाए जाते हैं। हमने देखा था जब 6 महीने तक कोई जीव क्षपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा तो 8 समय में 608 चढ़ेंगे, वो भी एक समय में मैक्सिमम कितने हो सकते, तो 108 सभी 608 एक समय में जाएगा ये नहीं हो सकता। इस प्रकार क्षपक श्रेणी में प्राप्त सभी स्थानों में जीवों का प्रमाण कहना चाहिए, यानी किसी भी स्थान में जो जो हम देखे ना एक समय दो समय जैसे अंतर्मूर्त ये सभी स्थानों में इतने जीव हो सकते 1 से लेकर 108 तक। संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि की जघन्य स्थिति में, अभी संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि लिया, ये तो क्षपक श्रेणी की अपेक्षा वो जघन्य और उसके अजघन्य जो स्थान हो गए वो सांतर निरंतर हो गए, अब कहते संगी पंचेंद्रिय के योग्य मिथ्या दृष्टि की जघन्य स्थिति में जीव प्रतर के असंख्यात विभाग प्रमाण है, संगी पंचेंद्र की मिथ्या दृष्टि की जघन्य स्थिति कब होगी,
असंगी से संगी में उत्पन्न
होता है, हाँ असंगी से संगी में आया है या एकेंद्रिय से संगी में उत्पन्न हुआ है, विग्रह गति के वहाँ नया बंध अंत कोड़ा कोड़ी सागर हुआ और उसकी स्थिति उतनी कहलाई है कि जीव प्रतर के असंख्यात विभाग प्रमाण होते हैं। हाँ जीवों की संख्या चल रही है, प्रमाण बात चल रही है यहाँ पर, वह तो है ये तो उनके जो समुद्र कीर्तना कहो या प्ररूपणा हुई कि है तो कितने हैं, सत संख्या तो कितने हैं, तो कितने हैं तो इतने हैं। द्वितीय स्थिति में भी वे
तो हम लोग को तिरेंच को ही लेना पड़ेगा ना,
सत्तर
के असंख्यात व्यापार का मार्ग, क्योंकि असंगी से उत्पन्न हो रहा है।
हाँ तो
तिरेंच को लेना पड़ेगा
कि नारकी को क्यों नहीं,
पहले नरक से
देव को क्यों नहीं, मनुष्य को क्यों नहीं।
नहीं यार, मैं क्या सोच रहा था, एकेंद्रिय से जो आएगा लंबे काल तक रहेगा।
हाँ, एकेंद्रिय से आने वाला, परंतु द्विंद्रिय से आने वाले के भी अंत कोड़ाकोड़ी तो हो ही जाती है, असंगी के समान बंद होता है, बंद होती उसकी उतनी स्थिति कहेंगे। असंगी से नरक में जाने वाले को भी उतना ही होता है, उसका पहला सत्व कितना भी क्यों ना हो, बंद होते ही उतना सत्व हो गया उसका, अने कम स्थिति के साथ वो आ रहा है, वो अपनी अपनी वहां की यथा योग्य हो। एक इंद्रिय से लेकर असंगी तक कितने भी कम स्थिति वाला वो जीव अगर पंचेंद्रिय में जन्म लेता है, संगी पंचेंद्रिय में, तो विग्रह गति के पहले समय में असंगी पंचेंद्रिय जैसा बंद होता है उसको।
नहीं, मेरा क्वेश्चन क्या था कि जो एक इंद्रिय से जो पंचेंद्रिय में आएगा,
एक इंद्रिय से
असंगी पंचेंद्रिय से जो पंचेंद्रिय में आता है उसका बंध ज्यादा होगा ना।
क्यों नहीं होगा ज्यादा, इनका ये क्वेश्चन है कि जो एक इंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ और जो असंगी से संगी पंचेंद्रिय में उत्पन्न हुआ, तो बंध किसका ज्यादा होगा? असंगी जैसा बंध होता हमने देखा था, एक इंद्रिय से असंगी तक कहीं से भी क्यों ना आए पंचेंद्रिय में संगी पंच, असंगी जैसा बंध होता है। आप भूल गए?
नहीं, वो तो मेरे ख्याल में, पर मैं क्या सोच रहा था कि यहाँ पे कंपैरेटिवली एक इंद्रिय से आए हो जीव का बंध कम होगा कि
अभी तो कह रहे हैं ना सेम है, क्यों कम होगा? सत्व कम लेके आया तो क्या हुआ, बंध की बात है। हाँ, ऐसा जीव होगा कि पंचेंद्रिय में से अधिक सत्व लेके गया है और वो वहां से निकला है, तो उसको सत्व तो अधिक कहलाएगा, मिनिमम की बात हो रही है ना। तो उसने असंगी जैसा हो या एक इंद्रिय जैसा हो, कहीं से भी सत्व उसने कम किया था और वो पंचेंद्रिय में आया है, तो जितना बांधेगा उतना सत्व कहलाएगा उसका, तो काल उसका उतना कहलाएगा। बिल्कुल एक इंद्रिय में से आए हुए कम बनता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ देखो, इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति तक ले जाना चाहिए, यानी कितने जीव है ये बात यहाँ बता रहे। अब श्रेणी प्ररूपना दो प्रकार का, यानी इन स्थानों में जीव कितने हैं उसकी अपेक्षा है श्रेणी प्ररूपना हो रही है।
109
पेज नंबर 109 ये हमने पढ़ा था, दोबारा पढ़ रहे हैं अभी। अनंत रूपनिधा परम्परोपनिधा, अनंत रूपनिधा प्रति स्थान कितने हो गए एक एक समय से बढ़ते हुए में, परम्परोपनिधा में एकदम तो हजम करके बताएंगे। उनमें अनंत रूपनिधा की अपेक्षा सातावेदनीय के चतुस्थान बंधक व त्रिस्थान बंधक जीव तथा असातावेदनीय के द्विस्थान बंधक व त्रिस्थान बंधक जीव ज्ञानावरणीय की अपनी अपनी जघन्य स्थिति में स्तोक है। अपनी अपनी जघन्य स्थिति, यानी जब सातावेदनीय का चतुस्थान बंधक है तब जो ज्ञानावरणीय की जघन्य स्थिति होगी, जब त्रिस्थान बंधक है तब जो ज्ञानावरण की जघन्य होगी, क्योंकि ज्ञानावरण का बंध पहले गुणस्थान से दसवें गुणस्थान तक हो रहा है, बंध की बात है। और यहाँ वो बंधक किसके कहला रहे, साता और असाता के, अपनी अपनी जघन्य स्थिति में स्तोक है। द्वितीय स्थिति में उनसे विशेष अधिक है, कितने प्रमाण से अधिक है, तो कहते पल्यपुम के असंख्यात वे भाग से खंडित करने पर उसमें से वे एक, हमने एडिशन किया था, एक खंड प्रमाण है। अधिक का प्रमाण कितना है, असंख्यातवा भाग है, कौन सा असंख्यातवा, तो पल्ले के असंख्यातवे भाग से खंडित करने पर एक भाग उतना है। फिर तृतीय स्थिति में जीव विशेष अधिक है, ऐसे विशेष अधिक कहाँ तक हो गए, तो यव मध्य तक, इस तरह यव मध्य तक विशेष अधिक होते गए हैं, उसके आगे वे विशेषहीन होते हैं, यानी इनकी यव मध्य रचना होती है, बढ़ते बढ़ते जीवों का प्रमाण बढ़ते बढ़ते फिर घटते घटते होगा। इस प्रकार सागरोपम शतपृथक स्थिति तक वे विशेषहीन है। ये तो त्रस जीवों का आश्रय करके ही प्ररूपणा चल रही है यहाँ पर। अने कुछ सौ सागर, ये उसका अर्थ होता है सागरोपम शतपृथक्त्व। सातावेदनीय के द्विस्थान और असातावेदनीय के चतुस्थान बंधक जीव। अभी सातावेदनीय नहीं, वो तो संक्लेश वाला है ना, असाता का चतुस्थान बंध रहा है। ज्ञानावरण की जगन्य स्थिति में स्तोक है, द्वितीय स्थिति में उनसे विशेष अधिक है, तृतीय स्थिति में चाहिए समय में नहीं, उनसे विशेष अधिक जीव है। इस प्रकार सागरोपम शतपृथक्त्व प्रमाण स्थिति तक वे उत्तरोत्तर विशेष अधिक विशेष अधिक है। पहला तो यव मध्य जैसा लिया था, यव मध्य के बाद विशेषहीन हो गए थे सागरोपम शतपृथक्त्व तक, अब ये तो विशेष आगे विशेष आगे विशेष अधिक सागरोपम शतपृथक्त्व तक गए हैं, और उसके बाद इसके आगे की स्थिति में वे उत्तरोत्तर विशेषहीन है। इस प्रकार साता व असाता वेदनी की उत्कृष्ट स्थिति तक विशेषहीन विशेषहीन है। इस प्रकार अनंतरोप निधा समाप्त हुई। स्थिति अधिक बनती उसका अर्थ है संकलेश अधिक है। देखो ये द्विस्थान या त्रिस्थान जो है वो अनुभाग की अपेक्षा है। जब हमने साता वेदनी में उसके स्पर्धक कैसे बताए जाते हैं, गुड़ खांड शर्करा अमृत, तो जैसे अगर हम गुड़ खांड शर्करा ऐसे शर्करा बंधेंगे तो कहेंगे त्रिस्थान, अमृत वाला बंधेंगे तो चतुस्थान, इस तरह से असाता के अपने जुदे। अब परंपरोपनिधा की अपेक्षा आज का विषय यहाँ से होता है। साता वेदनी के चतुस्थान बंधक व त्रिस्थान बंधक तथा असाता वेदनीय के द्विस्थान बंधक व त्रिस्थान बंधक जीव ज्ञानावरणी की जघन्य स्थिति के जीवों की अपेक्षा। हमने देखा ना वो तो बढ़ते 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 गए थे असंख्यात विभाग संख्या, तो जघन्य स्थिति की अपेक्षा उससे पल्लोपम के असंख्यात विभाग जाकर यव मध्य तक दुगुनी वृद्धि को प्राप्त है। यानी पल्ले के असंख्यात विभाग तक जाने तक दो गुने हो गए, विशेष अधिक विशेष अधिक ना, थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक, मान लेते ना दसवां भाग अधिक दसवां भाग अधिक अधिक दस स्थान जा। नहीं 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 नंबरिंग की जरूरत नहीं। देखो अगर दसवां भाग बढ़ता, मान लेते ना हजार था पहली संख्या और हजार का दसवां भाग यानी सौ सौ बढ़ता, तो कितने स्थान जाने पर हजार के दो हजार हो जाएंगे। हमने क्या देखा, हजार का दसवां भाग यानी सौ सौ बढ़ते हैं तो कितने दो हजार कब हो गए, दस स्थान जाने पर। ओरिजिनली सौ हजार थे, दसवां भाग बढ़ा तो दस स्थान पर जाने पर वो डबल हो जाएगा, ये कहना चाहते हैं। तो हर बार कितना बढ़ रहा है, पल्ले के असंख्यात पे भाग से भाग देकर एक खंड प्रमाण, जैसे हमने दस से भाग देकर एक खंड ने सौ प्रमाण बढ़ता था, तो जिस संख्या से भाग देते ना उतने स्थान जाने पर वो डबल होगा, आसान है ना ये। इसलिए कहते यहाँ यथार्थ में एट ए टाइम कितना बढ़ता है जीवों का प्रमाण एक स्थान से दूसरे में, तो कहते कि पल्ले के असंख्यात विभाग से भाग देकर एक भाग प्रमाण, पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण नहीं, भाग देकर एक भाग प्रमाण, तो ऐसे कितने स्थान जाने पर दो गुना होगा पल्ले के असंख्यात विभाग स्थान जाने पर, ये कहना चाहते हैं। ऐसे दो गुना कहाँ तक होगा, तो ये वो मध्य तक दो गुना होगा। उसके आगे पल्लोपम के असंख्यात विभाग जाकर वे दुगुनी हानि को प्राप्त होते, वही बात है। पहले तो असंख्यात भाग बढ़ता था, असंख्यात भाग हीन होगा, उतने ही स्थान जाने पर आधा हो जाएगा। इस प्रकार सागरोपम शतपृथक्त्व तक वे दुगुने हीन होते हैं। हमने देखा ना यहाँ का यवा मध्य बढ़ा यानी बीज जल्दी आ गया और फिर बाद में हीन होते चले जाते। अब सातावेदनी के द्विस्थान बंधक जीव और असातावेदनी के चतुस्थान बंधक जीव ज्ञानावरणी की जघन्य स्थिति संबंधी जीवों की अपेक्षा, यानी वह उनके जो जीवों की संख्या होगी उसकी अपेक्षा, उनसे पल्लोपम के असंख्यात पे भाग जाकर दुगुनी वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार सागरोपम शतपृथक्त्व तक वे दुगुनी दुगुनी वृद्धि को प्राप्त होते गए। यानी वो सागरोपम शतपृथक के पहले बीच में ही उनका यौ मध्य आया था, यहाँ तो वहां तक दुगुनी दुगुनी हुए। इससे आगे पल्लवम के असंख्यात वे भाग जाकर वे दुगुनी हानि को प्राप्त है। इस प्रकार साता व असाता वेदनीय की उत्कृष्ट स्थिति तक वे दुगुने दुगुने हीन है, तो उनकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती है?
15
हाँ
15 कोड़ा कोड़ी और 30 कोड़ा,
हाँ 30 कोड़ा कोड़ी सागर।
उत्कृष्ट स्थिति
सत्ता की अपेक्षा देखेंगे तो साता वेदनीय भी हो सकती है, क्योंकि वो तो असाता के परमाणु जो साता रूप हो जाते हैं उनकी स्थिति तो उतनी बनी रहती। बंध की अपेक्षा साता का उत्कृष्ट बंध तो 15 कोड़ा कोड़ी सागर का है, असाता का 30 कोड़ा कोड़ी सागर है। परंतु कभी परिणाम के वश क्या हो जाता है, वो तो असाता के संक्रमित होते हैं साता में, बंधने वाले में संक्रमण होता है। जब साता का बंध है तो असाता भी उस रूप होकर टर्न होते हैं, तो वो साता के भी उतनी स्थिति हो जाती, इसलिए उसको भी वो 30 कोड़ा कोड़ी सागर वाला कहेंगे। एक जीव दुगुण वृद्धि हानि स्थानांतर पल्लोपम के असंख्यात वर्गमूल लिखा है ना, यानी असंख्यात पल्लोपम के वर्गमूल, यानी पल्लोपम के वर्गमूल को असंख्यात गुणा करना, इतना है वो, उसको कहते असंख्यात पल्लोपम के वर्गमूल। तो वो असंख्यात शब्द पहले आना चाहिए और पल्लोपम का वर्गमूल इन्वर्टेड में लेना चाहिए, तो उसका सही अर्थ ख्याल में आ जाएगा। एक जीव दुगुण वृद्धि हानि स्थानांतर का अर्थ होता है जीव दुगुणी वृद्धि, यानी हम जीवों के प्रमाण की बात कर रहे हैं, दोगुना वृद्धि है दोगुना हानि, यौ मध्य के पहले दोगुना वृद्धि हो रही है, जिसको हम गुणहानि कहेंगे, इसको जीव गुणहानि कहेंगे। ये जीवों की संख्या डबल होती है, तो वो कितना है? तो हमने कहा पल्ले का असंख्यातवा भाग है, उसके भाग से भाग देकर जो संख्या आती है, परंतु वो तो भाग देने पर कितना स्थान चले जाते हैं, तो कहते पल्लोपम को असंख्यात से भाग देने पर पल्लोपम के वर्गमूल को असंख्यात गुणा करो, इतना उसका उत्तर आता है। पहले हमने देखा था ये कैसे आता है, मान लेते 256 है, 256 को हमने 4 से भाग दिया तो कितना आता है? 64 आता है। तो 64 यानी क्या, 256 का वर्गमूल कितना है?
16
तो 16 को 4 गुना है, समझ में? यही क्या है, कहीं पर भी हम ऐसा यानी पूर्व राशि से भाग देते हैं तो प्रथम वर्गमूल को गुणा करो इतना आता है, ऐसा ही यहाँ लिखा है। नाना जीव दुगुण वृद्धि हानि स्थानांतर, अभी एक जीव गुणहानि स्थानांतर ने एक गुणहानि, और नाना जीव दुगुण वृद्धि हाना स्थानांतर होता था नाना गुणहानि, नंबर ऑफ गुणहानिया स्तोक है, क्योंकि हमने देखे थे एक जीव गुणहानि ने एक गुणहानि, एक गुणहानि का प्रमाण यानी कितने स्थान जाने पर आधा होता है, और नाना गुणहानि ने नंबर ऑफ गुणहानिया टोटल नंबर ऑफ गुणहानिया वो कम होते हैं। एक जीव दुगुण वृद्धि हानि स्थानांतर उनसे असंख्यात गुना है, क्योंकि हमने कितने बार दुगुनी दुगुनी वृद्धि हो गई टोटल यौ मध्य तक और बाद में, उसकी जो संख्या है वो कम है और उससे असंख्यात गुणा वो एक गुणहानि का जो प्रमाण है वो होता है, ये उसका अर्थ है। इस प्रकार परम्पोरोप निधा समाप्त हुई। अब कहते जघन्य स्थान संबंधी जीवों के प्रमाण से, ये जघन्य स्थान में जो जीवों का प्रमाण है हमने देखा था ना, समस्त जीव कितने काल से अपहृत होते हैं, तो कहते उक्त प्रमाण से वे असंख्यात गृह गुणहानि स्थानांतर काल से ऊपर है। द्वितीय स्थान संबंधी जीवों के प्रमाण से वे समस्त जीव असंख्यात गुणहानि मात्र काल से अपहृत होते, यानी वहां कितने जीव है उसकी अपेक्षा बात कर रहे हैं, वो अवहार काल निकालने की पद्धति है, उसको कहेंगे असंख्यात गुणहानि स्थानांतर। एक गुणहानि स्थानांतर हमने देखा तापल्य का असंख्यात अभाव, उससे असंख्यात गुणा करना। द्वितीय स्थान संबंधी जीवों के प्रमाण से वे समस्त जीव असंख्यात गुणहानि मात्र काल से अपरत होते हैं, क्योंकि वो थोड़े अधिक है ना, थोड़े अधिक है, थोड़े अधिक है, जब जाके दो गुने हो गए तब कहेंगे। इस प्रकार यव मध्य तक ले जाना चाहिए। यव मध्य के जीवों के प्रमाण से सब जीव कितने काल द्वारा धारा हुआ अपरहत होते हैं, कुछ कम तीन गुणहानि स्थानांतर काल से वे अपरत होते हैं। शुरुआत कहाँ से की थी, जघन्य स्थान में, असंख्यात गुणहानि स्थानांतर, असंख्यात गुणहानिया, तो जब डबल हो गए तो थोड़े आधे हो गए, आधे हो गए, आधे हो गए, तो कितने, तो तीन गुणहानि के द्वारा अपरत होते हैं। इसी प्रकार यव मध्य के आगे भी जानकर कहना चाहिए। इस प्रकार अवहार प्ररूपना समाप्त हुई। इन्हें यव मध्य में जीवों का प्रमाण बहुत ज्यादा है तो उसकी भागहार वाली संख्या कम होगी वहां पर। आगे 111 पेज पर, जघन्य स्थान में स्थित जीव सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण है, कितने वे उनके असंख्यात वे भाग प्रमाण है। देखो यहाँ त्रसों की अपेक्षा प्ररूपना चल रही है, तो त्रस के टोटल जीव ही असंख्यात होते हैं, जगत प्रतर का कुछ भाग। इस प्रकार सब स्थानों के जीवों को जानकर भागा भाग की प्ररूपना करना चाहिए। देखो हमने पहले उसका तो प्ररूपना बताई, फिर प्रमाण बताया, फिर अवहने श्रेणी प्ररूपना बताई, अवहार काल बताया, भागा भाग अभी बता रहे। अब अल्प बहुत वो कहेंगे, देखो क्योंकि वो छह प्ररूपना, हाँ यहाँ नंबरिंग कर सकते अब, यानी ये अल्प बहुत है। पहले हमने भागा भाग देखा था, उसके पहले हमने अवहार देखा था, यानी अवहार प्ररूपना हुई, भागा भाग प्ररूपना हुई, उसके बाद पहले श्रेणी परंपरा, यानी परंपरा और अनंत रूपनिधा, परंपर रूपनिधा, इस तरह से श्रेणी प्ररूपना भी हुई थी। उसके पहले संख्या की बात की थी, तो अभी हम अल्पभूतों की बात देख रहे हैं। 111 पेज पर नया दूसरा पैराग्राफ, यव मध्यों के उत्कृष्ट स्थान में जीव सबसे स्तोक है। यव मध्य में जाना है, एक्चुअली यव मध्य में ज्यादा है, परंतु यव मध्य रचना होती है उसमें जो उत्कृष्ट ऊपर का स्थान है उसकी बात होनी चाहिए। हाँ हाँ, मुझे भी पहले ऐसे लगे ऐसा कैसे होता है, यानी यव मध्यों के नहीं, यवस्थ यवाकार रचना के ऐसा होने, हाँ यवाकार रचना में हमने रचना की ना, यव तक बढ़ते गए और ऊपर घटते गए, तो घटते गए जो ऊपर का सर्वोत्कृष्ट स्थान है वहां की बात है, तो वहां जीव सबसे स्तोक है, तो उनसे जघन्य स्थान में जीव असंख्यात गुणे। ये सब स्थानों में असंख्यात ही जीव थे हमने देखा था, प्रत्येक स्थान में, फिर भी उत्कृष्ट स्थान में जितने असंख्यात है उससे जघन्य स्थान में असंख्यात गुणा है, और गुणकार पल्यपम का असंख्यात अभाव है। अब तीन नंबर देना, उनसे यव मध्य के जीव असंख्यात गुणे हैं। गुणकार क्या है, यव मध्य से नीचे की अन्योन्य भस्य राशि गुणकार है। देखो इसका अर्थ हम देखते हैं, नीचे के स्थान में मान लेते हम कितने जीव है, तो हम समझाने के लिए कहेंगे तो 16 जीव, तो कहते दो गुना दो गुना दो गुना होते गए, मान लेते तीन बार दो गुना हुआ तो कितना हुआ, 16 से 32 हुआ एक बार, 32 से 64 हुआ दो बार, 64 से 128 हुए तीन बार, तो पहले कितने थे जघन्य स्थान में 16, अब उससे असंख्यात गुना जो कुछ है इतने गुना हुआ, तो कितने गुना हुआ तो कैसे समझना, तो तीन तीन गुणहानियां हुई ना नीचे से, तीन बार दो गुना हुआ, यानी यव मध्य के नीचे तीन गुणहानियां हैं, तो तीन बार दो को आपस में गुना करना तो आठ गुना करना, 16 को डायरेक्ट आठ गुना करना। ऐसे ही यहाँ प्रत्येक स्थान में असंख्यात जीव है, तो जघन्य स्थान में जितने असंख्यात है और जितनी असंख्यात गुणहानियां नीचे चली जाएगी यव मध्य के नीचे, उतनी बार दो लिखकर आपस में गुणा करना। तो जितने नाना गुणहानियां प्रमाण दो लिखकर आपस में गुणा करने पर जो राशि आती है उसको कहते हैं अन्योन्य अभ्यस्त राशि। तो यव मध्य की नीचे की अन्योन्य अभ्यस्त राशि से जघन्य के जो जीवों का प्रमाण को गुणा करेंगे तो यव मध्य में जीवों का प्रमाण आएगा, ये यहाँ का कहना है। तो उनसे यव मध्य के जीव असंख्यात गुणे हैं। पहले बताया था यव मध्य के उत्कृष्ट स्थान में, यवाकार रचना के उत्कृष्ट स्थान में, इसे वहां अर्थ लेना। अब यहाँ हमने तीसरी लाइन पढ़ी, यव मध्य से नीचे की अन्योन्य अभ्यस्त राशि गुणकार है। अन्योन्य अभ्यस्त राशि का अर्थ क्या देखा था, नाना नीचे की जो नाना गुणहानियां है, देखो नीचे तीन होगी ऊपर पांच होगी, तो ये तीन बार दो का गुणा करना आपस में। यव मध्य से नीचे के जघन्य स्थान संबंधी जीवों की अपेक्षा ऊपर के सब जीव असंख्यात गुणे हैं। यानी यव मध्य के नीचे के स्थानों की अपेक्षा यव मध्य के ऊपर के स्थान, ऐसा लेना उसका अर्थ। गुणकार क्या है, गुणकार कुछ कम डेढ़ गुणहानियां है। यानी यव मध्य के नीचे के जो जघन्य स्थान था उसकी अपेक्षा अगर ऊपर के जीव सब जीव है वो असंख्यात गुणे असंख्यात गुणे हो गए। क्योंकि हमने देखा था ना यव मध्य असंख्यात गुणा है, उसके ऊपर के जीव भी असंख्यात गुणा ही हो गए। यव मध्य से नीचे के जीव उनसे विशेष अधिक है। मैंने टोटल जीव लिया यव मध्य के नीचे, उनसे यव मध्य के ऊपरी जीव विशेष अधिक है। ये वाक्य डबल हुआ है, उनसे यव मध्य के ऊपरी जीव विशेष अधिक है। पुराने पुस्तकों में ये वाक्य डबल हुआ है, वो निकाल देना। अब लास्ट लाइन पढ़ती उस पैराग्राफ की, उनसे सब जीव विशेष अधिक है। इस प्रकार अल्प बहुत प्ररूपना समाप्त हुई। यानी यव मध्य के नीचे के टोटल जीव, यव मध्य के ऊपर के टोटल जीव, इस तरह से उनमें उन्होंने कंपेरिजन कर दिए। इसी प्रकार अब ये त्रसों की प्ररूपना हुई, पल्लवपम के असंख्यात वे भाग मात्र एकेंद्रिय के विचार स्थानों में। वो हमने विचार शब्द सुना था, हाँ विचार, वो क्या है, वो ध्यान का भेद है ना, पृथक वितर्क विचार, हाँ, और एकत्व वितर्क अविचार। विचार का अर्थ होता है पलटना। तो एकेंद्रिय के विचार स्थान है, एकेंद्रिय के योग्य जो मैक्सिमम बंद और मिनिमम बंद, मैक्सिमम से मिनिमम में कितना डिफरेंस है मालूम है, पल्ल का संख्यात्व भाग, संख्यात्व भाग द्विंद्रिय से लेकर, यह एकेंद्रिय की बात है ना, द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय के उत्कृष्ट और जघन्य में भेद कितना है, तो पल्ले का संख्यात्व भाग, और एकेंद्रिय के जघन्य और उत्कृष्ट में भेद है पल्ले का असंख्यात्व भाग। द्विंद्रिय से असंगी तक, हाँ संगी के तो अंत कोड़ा कोड़ी से लेकर सत्तर कोड़ा कोड़ी मिथ्यात्व में, और ज्ञानावरण में अंत कोड़ा कोड़ी से लेकर तीस कोड़ा कोड़ी। अब एकेंद्रिय में ज्ञानावरण में देखेंगे हम तो उसका उत्कृष्ट बंध है एक सागर का तीन सप्तमांश, ज्ञानावरण का तीन सप्तमांश तीन बटे सात। वो लंदन वाले सब आए थे ना, सप्तमांश सप्तमांश क्या, वो सूर्याबेन बताते लेक्चर के पहले, तो ये उनको सप्तमांश शब्द नहीं समझ में आ रहा था। थ्री अपॉन सेवन, थ्री बाय सेवन, थ्री बटे सात हिंदी में कहते, तो उनको उनको हिंदी फिर अंग्रेजी में समझाया। होता होगा पता नहीं, वो कैसे शायद अंग्रेजी में उनका शिक्षण हुआ होगा। हाँ हाँ देखो देखो नीचे का पैराग्राफ, इसी प्रकार, इसी प्रकार ने पहले त्रसों के स्थान बताए, इसी प्रकार पल्लवपम के असंख्यात, हाँ यहाँ इसमें नंबर नहीं अभी, मात्र एकेंद्रिय के विचार स्थानों में और उसके ही संख्यात वे भाग प्रमाण, उसके ही ने पल्ले के संख्यात वे भाग प्रमाण विकलेंद्रिय के विचार स्थानों में, बात ख्याल में ना अभी, एकेंद्रीय एवं विकलेंद्रीय जीवों की भी प्ररूपणा करना चाहिए। विशेष इतना कि साता व असाता वेदने के द्विस्थान संबंधी यवमध्य ही है, क्योंकि यहाँ उन एकेंद्रीय और विकलेंद्रियों में त्रिस्थान और चतुस्थान अनुभागों का बंध नहीं होता, न इतनी विशुद्धि है न इतने संकलेश है, न साता का न असाता का, ये कहना चाहते हैं। ख्याल में आती बात, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं कहा कि साता के त्रिस्थान नहीं बनते, साता और असाता दोनों के त्रिस्थान और चतुस्थान नहीं बनते, क्योंकि हमने देखे उनके जो स्थिति भी इतनी कम बनती है, तो उनके योग्य वहां संकलेश भी और उनके योग्य वहां विशुद्धि होती है, तो उसमें केवल द्विस्थान ही बंधेंगे। किंतु संगी पंचेंद्रिय की गुणहानि शलाकाओं से, वहां की गुणहानि शलाकाएं असंख्यात गुणीहीन व संख्यात गुणीहीन है। देखो संगी पंचेंद्रिय की गुणहानि शलाकाएं यानी नाना गुणहानियां, वहां की गुणहानि शलाकाएं असंख्यात गुणी है, यानी एकेंद्रीय के लिए असंख्यात गुणी हीन हो जाएगी। एकेंद्रीय में और विकलेंद्रीय में संख्यात गुणहीन हो जाएगी। प्रमाण एकेंद्रीय जीव अनंत है, संगी पंचेंद्रिय की ध्रुव स्थिति से नीचे के और असंगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति से ऊपर के सत्व स्थानों का जीव समुदाहार करने के लिए शक्य नहीं है, क्योंकि उसका उपदेश प्राप्त नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? संगी पंचेंद्रिय की ध्रुव स्थिति ने हमने अंत कोड़ा कोड़ी सागर देखी थी, और असंगी पंचेंद्रिय की उत्कृष्ट स्थिति के ऊपर के उसके जो हजार सागर हैं, उनके जो सत्व स्थान है, अनेक सत्व स्थान पॉसिबल है, क्योंकि पंचेंद्रिय में कम स्थिति बंद करके नीचे आया है, तो एक 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 समय से भी चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे, क्योंकि नया बंध कम होगा तो वहां जितने काल तक रहेगा उतना एक एक निशे गल जाएगा सत्ता में से, परंतु उस संबंधी यहाँ कोई उपदेश अवेलेबल नहीं है, यानी जीवों की संख्या का उपदेश अवेलेबल नहीं है। वहां इतने विकल्प हो गए वो तो बात समझ में आवे ऐसी है, एक 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 समय से घटते हुए सभी स्थान पाए जाएंगे, परंतु वहां जीव कितने है उसका उपदेश नहीं है। तो कहते उसका जीव समुदाहर करने के लिए शक्य नहीं है। अब कहते एवं छन्नम कम्माणम, ज्ञानावरणीय के समान ही शेष छह कर्मों के उत्कृष्ट स्वामित्व की प्ररूपणा करना चाहिए। स्वामित्व जिस प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के उत्कृष्ट व अनुत्कृष्ट स्वामित्व की प्ररूपणा की है, उसी प्रकार शेष छह कर्मों की प्ररूपणा करना चाहिए। किसको छोड़ा मनीषा बेन? आयु को। बहुत अच्छा। विशेष इतना है कि मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरूपम है। अनुत्कृष्ट स्वामित्व का कथन करते समय संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि से लेकर अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्राय तक स्वामी है, ऐसा कहना चाहिए। ज्ञानावरण में हमने कहाँ पर लिया था? बारहवे के अंत में, और यहाँ इसका क्षय दसवें में होता है, तो वहां तक लेना। नाम व गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण है। इनके अनुत्कृष्ट स्थिति के स्वामित्व का कथन करते समय संगी पंचेंद्रिय मिथ्या दृष्टि से लेकर अंतिम शब्द डालो यहाँ, अंतिम समयवर्ती अयोग केवली तक स्वामी है, ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि यह तो मूल प्रकृति की अपेक्षा ही बात कर रहे हैं। तो नाम कर्म और गोत्र कर्म दोनों की सत्ता अंतिम समय तक है। अंतिम समय में उच्च गोत्र एक निषेक पड़ा है, निज गोत्र कहाँ जला जाता है?
सत्ता की विच्युति
चौदहवे के उपांत समय में, तेरवे में कोई सत्ता की विच्छुति नहीं होती, उदय की विच्छुति होती है, अपन सत्ता में पड़े रहते। ये सारे अनुदय रूप बहत्तर प्रकृतियां उपांत समय में जाती है ना, तो नीच गोत्र वहां होगा, उसकी बात नहीं, अंतिम समय में एक है। यहाँ तो गोत्र कर्म इतना ही लिखा है, उच्च नीच बात नहीं बताई। ना ना ना, अंतिम समय में, यहाँ गोत्र कहने से उच्च गोत्र है ना, अंतिम समय में उन्होंने बताया ना, अंतिम समयवर्ती अयोग केवली तक स्वामी है। और वहाँ कोई जो नाम कर्म की वहाँ जो प्रकृतियाँ है अंतिम समय तक, जो अंतिम समय में क्षय होने वाली, वो कितनी है? 13 है। बहुत अच्छा। उसमें से एक मनुष्य गत्यानुपुरी का उदय नहीं, बाकी 12 उदय रूप होती है वहाँ पर। जो पंचेंद्री जाति है, मनुष्य गति है ना, फिर त्रस है, बादर है, पर्याप्त है, सुभग है, आदेय, यशस, कीर्ति और तीर्थंकर जिसको होगा वो, ये वहाँ कितने हो? ये 9 नाम की तो 9 होती है, और बाकी तो एक वेदनीय है, आयु है और गोत्र है, तो 12 हो जाती है। 10वें में बंद है और 12वें में उसका क्षय है, ज्ञान और दर्शन अंतराय का, 3 घाती का। अंतराय का 30, उसको सबको तीसीय कहते हैं, ज्ञानावरण, दर्शन और अंतराय और वेदनीय। वेदनीय असाता है, परंतु वो तो साता को भी तीसीय, क्योंकि आगे साता ही बनती, फिर भी उसको तीसीय के प्रोपोर्शन में ही लेते हैं, वहां पर उसका बंद भी उस प्रोपोर्शन में लेते हैं। हाँ देखो देखो, इसी प्रकार वेदिनी कर्म की भी प्ररूपना करना कहना चाहिए। विशेष इतना है कि उसकी उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ाकोड़ी सागरूपम है। अब ये तो उन्होंने बता दिया, अब इसके स्वामित्व की बात करेंगे। सामित्येन उक्कस्य पदे आवोवेण कालदो उक्कस्य, आयु की बात चल रही। पहले तो उन्होंने ज्ञानावरणादि की बात बताई थी कि 12वें के अंत में, मोहिनी के लिए 10वें के अंत में वगैरह वगैरह, और अघाती के लिए 14वें के अंत में, 3 अघाती के लिए। देखो, स्वामित्व की अपेक्षा उत्कृष्ट आयु कर्म की वेदना, यानी आयु की उत्कृष्ट स्थिति जिसको कहें, काल की अपेक्षा उत्कृष्ट किसके होती है, यह सूत्र सुगम है। अब उसके लिए वो सारी कंडीशंस बता रहे, 113 पेज पर सूत्र ऊपर का। अन्नदरस मनुष्यस्य व पंचेन्द्रिय तिरिक्ख योनियस्य व सन्निस्य सम्माइट्ठिस्य व, ब्रैकेट में उन्होंने मिच्छा इट्ठिस्य व लिखा है, यानी सम्यक दृष्टि के या मिथ्या दृष्टि के, क्योंकि सम्यक मिथ्या दृष्टि के, अच्छा वो सत्ता पड़ी है। सव्वा ही पज्जत्ति ही पज्जत्तयदस्य कमभूमियस्य व कमभूमि परिभागस्य व संखेजवासावस्य इत्थिवेदस्य व पुरुषवेदस्य व नवसेवेदस्य व जलचरस्य व थलचरस्य व सागार जागार तप्पाउग्ग संकिलिट्ठस्य व तप्पाउग्ग विशुद्धस्य व उक्कस्याय आबाधाय जस्सतम देवनिर्याउम पढ़म समय बंधतस्य आवो वेणा कालदो उक्कस्सा। क्या कहना चाहते हैं? काल की अपेक्षा उत्कृष्ट में आबाधा काल की अपेक्षा, आबाधा के समय गिन कर बताए, उसके निषेक रचना उतनी हुई, पर काल की अपेक्षा कितना काल बंधा, क्योंकि आबाधा के काल के बाद उसके निषेक पड़े ने, वो सत्ता में तो पड़े ना, तो उसकी सत्ता अगर गिनेंगे तो आबाधा के पहले यानी बंध के पहले समय से गिनेंगे, क्योंकि अंतर्मूर्त प्रमाण तक बंद होता रहे तो अंतर्मूर्त के अंतिम समय में उसकी तो आबादा अंतर्मूर्त से घटेगी ना, तो उसका काल भी घटेगा ऐसा कहेंगे। तो उसका उत्कृष्ट काल कब था? बंधने के पहले समय में। अभी हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। ऊपर ये ना सारे निषेध कहाँ है, मान लेते अभी मरण के लिए 27 साल बाकी है और आगे उसने 100 साल की आयु बांधी है, तो जो बांधी उसकी स्थिति कितनी पड़ी है? आबाधा प्लस 27 साल प्लस, हाँ तो 127 साल की वो सत्ता पड़ी है ऐसा कहेंगे। हाँ देखो यहाँ नीचे पढ़ते उसके बाद अवगाहना कुल जाति नहीं 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 हिंदी में पढ़ना बाकी है। हिंदी जो सूत्र का हिंदी अर्थ जो कोई मनुष्य या पंचेंद्रिय तिर्यंच संगी है सम्य दृष्टि अथवा मिथ्या दृष्टि है वो सम्मा इच्छिते व मिच्छाते दोनों को हो सकता है। सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है क्योंकि सम्यक दृष्टि हो तो देव की आयु तो वो बांधेगा परंतु मिथ्या दृष्टि न रख के आयु बांधेगा इसलिए दोनों को लिया। कर्मभूमि या कर्मभूमि प्रतिभाग में उत्पन्न हुआ है केवल मनुष्य और तिर्यंच को ही लेना है इसलिए संख्यात वर्ष की आयु वाला है क्योंकि असंख्यात वर्ष की आयु वाला देव को ही बांधेगा और वो सौधर्म ईशान वाले देव की आयु बांधेगा सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक की बांधेगा इसलिए उसको नहीं लिया इसलिए संख्यात वर्ष की आयु वाला ही लिया। स्त्री वेद पुरुष वेद या नपुसक वेद से वो बिंदी न की नहीं पु के ऊपर होनी चाहिए नपुसक वेद से संयुक्त है यानी कौन से सभी वेद वाले वो उतना ही बंद कर सकते हैं। जलचर अथवा थलचर है किसको नहीं लिया नभचरों को नहीं लिया। हाँ जलचर अथवा थलचर है पहले नभचरों को भी लिया था ना अन्य कर्मों के उत्कृष्ट में लिया था क्योंकि जो देखो पंछी है वो तो 33 सागर की देव की आयु तो नहीं बांधेंगे बांधेंगे तो मैक्सिमम नरक की बांधेंगे तो नरक की बांधेंगे तो वो पंछी मरकर सातवें नरक में तो नहीं जा सकते समझ में इसलिए वो हाँ जलचर यानी मत्स्य जाता है और थलचर यानी वो तो मनुष्य भी जाते हैं इसलिए कौन से पेज पर में 90 हाँ वो कौन सा बांधता है जी हाँ 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 वही वही जलचर थलचर नभचर सब लिए थे है ना वहां आयु बंधने की बात नहीं थी ज्ञानावरण का उत्कृष्ट बंध की बात थी वहां पर तो पंछी हाँ ये खचर आकाश हाँ उसमें तो विद्याधरण को भी देते यहाँ तो नभचर को नहीं लिया पंछी को नहीं लिया। हाँ देखो साकार उपयोग से सहित है यानी भले विशुद्ध हो या संकलेश हो साकार में होगी जागरूक है जागरूक यानी जागृत चाहिए एक्चुअली जागरूक जागार जागरूक अलग बात है जागृत अलग बात है जागृत होना चाहिए नहीं ठीक है ना जागृत होना चाहिए वो तत्प्रायोग्य संकलेश अथवा तत्प्रायोग्य विशुद्धि से संयुक्त है। तत्प्रायोग्य क्यों कहा
मध्यम परिणाम
नहीं
मध्यम परिणाम
देखो आयु का बंध अति संकलेश में और अति विशुद्धि नहीं होता आयु का बंध मरकर जाने वाले के लिए शा अलग है बंध तो बंधने की बात है इसलिए तत्प्रायोग्य लिया शब्द संयुक्त है तथा जो उत्कृष्ट आबादा के साथ देव व नारकियों की उत्कृष्ट आयु को बांधने वाला है। उत्कृष्ट आबादा ने 1/3 पूर्व कोटि होगी यही क्योंकि उनकी उत्कृष्ट आयु उत्कृष्ट है तो 1/3 करने पर 1/3 पूर्व कोटि उत्कृष्ट आबादा होगी। उसके बांधने के प्रथम समय में आयु कर्म की वेदना काल की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है ये प्रथम समय में उसका काल उत्कृष्ट पड़ा है। आपको याद होगा महाबंध में जब हमने बात की वहां पर भी हमेशा आयु यानी उत्कृष्ट आबादा को लेकर उसकी स्थिति गिनते थे वहां ऐसा भी आता ना एक बार उत्कृष्ट बंध किया फिर दोबारा उत्कृष्ट बंध कितने काल के बाद होगा या अर्लिएस्ट कितने काल के बाद होगा ऐसा वहां प्रश्न आया था। बोलो अर्लीस्ट कब होगा और लेटेस्ट यानी लेट में लेट कितना होगा अंतर, फिर से
अनंत
देवायु बांधी उसने, उत्कृष्ट देवायु बांधी
वापस नहीं बंधेगा उत्कृष्ट पर।
देखो 33 सागर के बांधे और अंतर पूर्व कोटि बराबर, और फिर वो घाता इश्क हुआ 10,000 वर्ष की कर दी तो 10,000 वर्ष यानी हम अंतर पूर्व कोटि तो भोगेगा क्योंकि आबाधा निश्चित है मरेगा नहीं, तो अंतर पूर्व कोटि के बाद उसने 10,000 वर्ष भोगे, फिर आया मनुष्य में और फिर जब उसने आयु बांधी ये हो सकता है ना। हाँ देखो देखो कहाँ गया है नीचे
जो काता इसको करता है तो उसके सत्ता में से वो कम हो जाता है ना।
हाँ 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 कभी तो हो जाते हैं 10,000 वर्ष के ही रहेंगे पर आबादा चेंज नहीं होगी। हाँ 33 सागर की बांधी पर वो मनुष्य भाव में ही उसने उसको घटाया, उसके कोई परिणाम ऐसे बिगड़ गए वो 10,000 की रहेगी किंतु आबादा तो उतनी ही रहेगी। तो कहते कि उसके प्रथम समय में आयु कर्म की वेदना काल की अपेक्षा उत्कृष्ट होती है।
नीच गोत्र वाला जो जीव है,
नीच गोत्र वाला जीव है मनुष्य तिर्यंच। हाँ
नीच गोत्र वाला मनुष्य कौन से गुण स्थान तक जाता है?
पांचवे गुणस्थान तक कहते हैं ना नीच गोत्र वाला,
उसके ऊपर के गुणस्थान में नहीं जाएगा ना,
जाएगा ना उसको बदलता ऐसा आता है ना कहीं कहीं। तिर्यंच का पांचवा गुणस्थान है पर मनुष्यों के लिए दोनों बताते हैं ना, वो तो बदलता है ऐसा
जाता है
ऐसा आता है। हाँ देखो अभी हम इसकी विशेषता नीचे बढ़ते स्पष्टीकरण अवगाहना कुल जाति वर्ण विन्यास और संस्थान आदि के भेदों से निर्मित विशेषता का अभाव बतलाने के लिए सूत्र में अन्नदरस्य यह कहा है, यानी कोई अन्यतर मनुष्य संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच कहने से यानी वो बड़ी अवगाहना वाला मत्स्य होना चाहिए छोटी अवगाहना नहीं ऐसा नहीं कहा। विन्यास यानी उसकी विन्यास यानी अवगाहना नहीं, विन्यास यानी उसका स्प्रेड एक्चुअली होता है। विन्यास यानी भी इसमें क्या लेना है, वर्ण विन्यास लेना है कि वर्ण और विन्यास अलग अलग निकाला, नीचे कुछ लिखा है विन्नान इति पाठ विन्यास का कहा विन्नान भी पाठ है विन्नान, इसके ज्ञान की बात होगी क्या है। देखो कुल और जाति, जाति ने वो एकेंद्रीय जाति नहीं समझना है, पंचेंद्रीय तो बता ही दिए जाति जाति कुल और जाति ने वो माता का हाँ पिता का माता का उसका वर्ण कैसा है उसके भेद नहीं बताए नहीं, संस्थान कोई भी हो सकता है। तो ऐसे उसके द्वारा जो विशेषता है उसकी कोई चर्चा नहीं है, वो विशेषताओं का अभाव है इसलिए कोई भी जीव हो सकता है अधिक अवगाहना वाला छोटी अवगाहना वाला बाकी कंडीशन वो फिलफिल। हाँ बंद कर सकते संस्थान सहनन की बात तो नियम है वहाँ पर, वो 33 सागर के देव का भी हो या 33 सागर नर का भी बांधने वाले का तो वज्रेश्वर नारायण सहनन होना चाहिए उस भाव में। देवों की उत्कृष्ट आयु के बंधक मनुष्य ही होते हैं क्योंकि मुनिराज ही इतनी आयु बांधेंगे, तथा नारकियों की उत्कृष्ट आयु के बंधक मनुष्य अथवा संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच होते हैं यह जतलाने के लिए मनुष्य सवा पंचेंद्रिय तिरिक्ख जोनीय सवा सन्निस ऐसा कहा है। तिरिक्ख जोनी कहने से तिर्यंच योनि यानी तिर्यंच जीव, यहाँ योनिमति से कोई मतलब नहीं है। देवों की उत्कृष्ट आयु को समय दृष्टि ही बांधते हैं तथा नारकियों की उत्कृष्ट आयु को मिथ्या दृष्टि ही बांधते हैं यह प्रकट करने के लिए सम्मादिष्ठिस्वा मिच्छादिष्ठिस्वा ऐसा निर्देश किया गया है, इसलिए ऊपर उन्होंने डाला है क्योंकि नीचे स्पष्टीकरण में तो उसका नाम ले लिया उन्होंने। जो छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो चुके हैं वे ही नारकियों की उत्कृष्ट आयु को बांधते हैं, क्योंकि देवों की उत्कृष्ट आयु तो वो जब 8 वर्ष के बाद संयमी हो गए उसके बाद बांध सकते हैं, और वो भी छोटी आयु वाले हो गए तो ही 1/3 पहले बांध सकते हैं। परंतु यहाँ उत्कृष्ट की बात आती है ना, तो देखो क्या कहते हैं, नारकियों की तो अंतर्मुत क्या कहा, जो छह पर्याप्तियों से पर्याप्त हो चुके वे ही नारकियों की उत्कृष्ट आयु को बांधते हैं, यह जतलाने के लिए सौवा ही पज्जत्ति ही पज्जत्त यदस्य ऐसा कहा है। तो उसकी यहाँ उत्कृष्ट आबाधा कैसे घटित होगी, बांधने के लिए कोई कंडीशन आबाधा के लिए फिर कहेंगे वो पूरे 1/3 पूर्व कोटि पहले बांधे, परंतु नारकी की उत्कृष्ट बांधी तो अंतर्मूर्त में भी बांध सकते हैं। हमने देखा था करोड़ पूर्व की आयु लेके आया है और कदली घात होता है अंतर्मूर्त में आयु बांधता है, ऐसा भी देखा था हमने। तो पर्याप्ति होने पर उसके इतनी बड़ी आयु बांध सकता है, कितनी भी आयु लेकर क्यों ना आया हो। देवों की उत्कृष्ट आयु 15 कर्म भूमियों में ही बंधती है, क्यों, भूमि वाला कितना, दो सागर का बांधेगा, ज्यादा नहीं मैक्सिमम। तथा नारकियों की उत्कृष्ट आयु 15 कर्म भूमियों और कर्म भूमि प्रतिभागों में भी बांधी जाती है। देखो क्या कहते हैं, क्योंकि देवों की उत्कृष्ट आयु बांधने वाले तो मनुष्य है, तो इसलिए वो 15 कर्म भूमिया कहा, और नारकियों की उत्कृष्ट वो तो महामत्स्य कहो या अन्य सिक्स्थ मत्स्य, वो तंदुल मत्स्य, वो भी बांध सकता है, इसलिए वहां वो कर्मभूमि प्रतिभाग वो भी ले लिया।
प्रतिभाग
कम्म भूमि परिभाग सवा, यानी वो स्वयं प्रभ पर्वत के बाहर की ओर की बात है। देवों और नारकियों की उत्कृष्ट आयु को असंख्यात वर्षायुष का तीर्यंश या मनुष्य नहीं बांधते, उत्कृष्ट आयु को, आयु को नहीं बांधते ऐसे नहीं लिखा, उत्कृष्ट आयु को नहीं बांधते, किंतु संख्यात वर्षायुष का ही बांधते हैं, यह जतलाने के लिए संख्यज वासा हुस्स ऐसा निर्देश किया है। देवों और नारकियों की उत्कृष्ट आयु के बंध का तीनों वेदों के साथ विरोध नहीं है, यह जतलाने के लिए। अब तीन वेद ने भाव वेद लेना यहाँ पर, क्योंकि मुनिराज बांधते हैं तो द्रव्य से तो पुरुष ही हो गए, यह जतलाने के लिए इथ्य वेदस्वा पुरुष वेदस्वा नमुसे वेदस्वा ऐसा कहा है। नीचे लिखा है देखो, यहाँ भाव वेद का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि द्रव्य वेद का ग्रहण करने पर द्रव्य स्त्री वेद के साथ भी नारकियों की उत्कृष्ट आयु के बंध का प्रसंग आता है, परंतु उसके साथ नारकियों की उत्कृष्ट आयु का बंध होता नहीं है, क्योंकि 5वीं पृथ्वी तक सिंह और 6ठी पृथ्वी तक स्त्रियां जाती है, इस सूत्र के साथ विरोध आता है। देवों की भी उत्कृष्ट आयु द्रव्य स्त्री वेद के साथ नहीं बनती, क्योंकि अन्यथा अच्युत कल्प से ऊपर नियमतः निर्ग्रंथ लिंग से ही उत्पन्न होते हैं, इस सूत्र के साथ विरोध आता है। अच्युत से ऊपर है ने ग्रवेको में आनत प्राणत आरण अच्युत, यानी 16वें सर्ग के ऊपर कहने ग्रवेक आदि में, वहां तो मुनिराज ही जाएंगे और वो निर्ग्रंथ लिंग है ने तो मिथ्या दृष्टि भी निर्ग्रंथ लिंग वाले ग्रवेक में जा सकते हैं, हाँ ये कहना चाहते। और द्रव्य स्त्रियों के निर्ग्रंथता संभव नहीं है, क्योंकि वस्त्रादि परित्याग के बिना उनके भाव निर्ग्रंथता का अभाव है। द्रव्य स्त्रीवेदी व नपुसक वेदी वस्त्रादि का त्याग करके निर्ग्रंथ लिंग धारण कर सकते हैं, ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैसा स्वीकार करने पर छेद सूत्र के साथ विरोध होता है, क्योंकि वो तो सूत्र में ये जो बताया है उसके साथ विरोध आ जाएगा। देवों की उत्कृष्ट आयु के बंधक स्थलचारी संयत मनुष्य स्थलच तथा नारकियों की उत्कृष्ट आयु के बंधक स्थलचारी मिथ्यादृष्टि मनुष्य एवं जलचारी व स्थलचारी संगी पंचेंद्रिय तिर्यंच मिथ्यादृष्टि है। स्थलचारी भी हो गए ना, उसमें कितने हैं, हम महामत्स्य को लेते हैं, परंतु ऐसे भी जो अन्य जो होगी स्थलचर संगी पंचेंद्रिय जो कोई यथा योग्य, इसके ज्ञापनार्थ जलचरस्वा थलचरस्वा ऐसा कहा गया है। आशंका, आकाशचारी जीव देव नारकियों की उत्कृष्ट आयु को क्यों नहीं बांधते हैं? नहीं, क्योंकि पक्षियों के सप्तम पृथ्वी के नारकियों अथवा अनुत्तर विमानवासी देवों में उत्पन्न होने की सामर्थ्य नहीं है। यदि कहा जाए कि विद्याधर भी तो आकाशचारी है, वे वहां उत्पन्न हो सकते हैं, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि विद्या की सहायता के बिना जो स्वभाव से ही आकाश गमन में समर्थ है उनमें ही खगचरत्व की प्रसिद्धि है। यानी वो तो देवों को कह सकते पर विद्याधरों को नहीं, क्योंकि वो विद्या के बिना वहां नहीं समर्थ। और यहाँ आकाशगामी ने नभचर्य ने पंछी समझना, विद्या के द्वारा नहीं, उनकी अपनी जो अंगभूत शक्ति है। दर्शन उपयोग में वर्तमान जीवों के उत्कृष्ट आयु का बंध नहीं होता, किंतु ज्ञानोपयोग में वर्तमान जीवों के ही उसका बंध होता है, यह जतलाने के लिए साकार पद का निर्देश किया गया है। सोए हुए जीवों के उत्कृष्ट आयु का बंध नहीं होता, यह बतलाने के लिए जागार पद का प्रयोग किया है। जिस प्रकार शेष कर्मों की उत्कृष्ट स्थितियां उत्कृष्ट संकलेश से बनती है, वैसे आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति उत्कृष्ट विशुद्धि अथवा उत्कृष्ट संकलेश से नहीं बनती है ना। आप कहेंगे एकदम उत्कृष्ट विशुद्धि देवायु बनती होगी तेतीसागर की, नहीं, यथा योग्य। तो क्या आयु बंध तो मध्यम परिणामों में होता, यह जतलाने के लिए तब पावग संकलिठस व तब पावग विशुद्धस व ऐसा कहते हैं। उत्कृष्ट आबाधा के बिना उत्कृष्ट स्थिति नहीं होती, यह ज्ञापन कराने के लिए उपकस्याय आबाह है ऐसा कहा है। जो कि द्वितीयादिक समयों में आबाधा उत्कृष्ट होती नहीं, क्योंकि जब पहली बार पहले समय में आयु का बंध शुरू किया वहां पर ही आबाधा उत्कृष्ट कहलाएगी। तो द्वितीयादि समयों में आबाधा उत्कृष्ट होती नहीं है, अतः पूर्व कोटि के तृतीय भाग को आबाधा करके देवों नारकियों की उत्कृष्ट की आयु को बांधने वाले जीव के बंध के प्रथम समय में ही उत्कृष्ट आयु वेदना होती है ऐसा कहा है। क्योंकि यहाँ काल की बात है ना, यहाँ परमाणु की संख्या की बात नहीं है, यहाँ पर संख्या की बात थी आयु के संख्या की। तो वो जलचर लाया था दो बार तीन बार आयु बांधने वाला, और फिर उसको कदलीघात करा के फिर दूसरी आयु बांधी थी, तब जाके परमाणु मैक्सिमम हुए थे। यहाँ तो काल की अपेक्षा बात करनी, आबादा प्लस आगे के मैक्सिमम आयु कहते। तब अतिरिक्तम अनुकस्स, उससे भिन्न अनुत्कृष्ट वेदना होती है, उससे अर्थात उत्कृष्ट से विपरीत आयु कर्म की वेदना काल की अपेक्षा अनुत्कृष्ट वेदना होती है। यह अनुत्कृष्ट काल वेदना असंख्यात भेद रूप है। क्यों असंख्यात भेद हो गए?
आयु
एक एक समय से कम आयु वाली बात हो गई तो उसके अनुत्कृष्ट कहलाएगी। वो एक एक समय हम अंतर्मूर्त तक तो बंध के काल की अपेक्षा भी अनुत्कृष्ट कह सकते हैं, और वहां पर भी तेतीस अगर माइनस एक समय की आयु बांधी ऐसा भी उसमें हो सकता है। हाँ, तो उसके देखो, यह अनुत्कृष्ट काल वेदना असंख्यात भेद स्वरूप है। इसीलिए उसके स्वामी भी असंख्य प्रकार है। यथा पूर्व कोटि के तृतीय भाग को आबाधा करके 33 सागरोपम प्रमाण आयु को जिसने बांधा है वह काल की अपेक्षा उत्कृष्ट वेदना का स्वामी है। जिसने एक समय कम उत्कृष्ट आयु को बांधा है वह अनुत्कृष्ट काल वेदना का स्वामी है। जिसने दो समय कम उत्कृष्ट आयु को बांधा है वह भी अनुत्कृष्ट काल वेदना का स्वामी है। जिसने तीन समय कम उत्कृष्ट आयु को बांधा है वह भी अनुत्कृष्ट काल वेदना का स्वामी है। इस प्रकार असंख्यात भाग हानि होकर तब तक जाती है जब तक जघन्य परिता संख्यात से उत्कृष्ट आयु स्थिति को खंडित करने पर, यानी जो हमने 33 सागर की बात देखी थी प्लस आबादा, उससे जघन्य परिता संख्या से उसको खंडित किया, उसमें से एक खंड प्रमाण हानि नहीं हो जाती। क्या कहना है, एक एक समय कम बांधे ऐसे इतने उन्होंने स्थान बता दिए, यानी उत्कृष्ट संख्या से खंडित करने पर एक खंड प्रमाण हानि जब तक नहीं होती। और पश्चात उत्कृष्ट आयु को उत्कृष्ट संख्या से खंडित करके उसमें से एक खंड प्रमाण हानि के हो जाने पर असंख्यात भाग हानि की समाप्ति और संख्यात भाग हानि का प्रारंभ होता है। यानी अभी तक तो इतने स्थान कम हुए तो उसको कितना तो घटा, तो असंख्यात वा भाग कम हुआ। बाद में संख्यात भाग हानि का प्रारंभ होता है। इस प्रकार संख्यात भाग होनी हानि होकर तब तक जाती है जब तक उत्कृष्ट आयु का एक समय कम अर्ध भाग हीन नहीं हो जाता। देखो घटते 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 आयु बांधी कितना हुआ, आधे भाग से एक समय कम वहां तक चले गए। संख्यात भाग हानि कब तक चली कहेंगे, संख्यात गुण हानि कब कहेंगे, आधा हो जाएगा तब, तो आधे से एक समय ज्यादा है। ख्याल में ना, जितनी बांधी 33 अगर उसकी आधी बांधेंगे तो क्या कहेंगे, संख्यात गुण हानि कहेंगे, एक समय ज्यादा। तो जब तक उत्कृष्ट आयु का एक समय कम अर्धभाग हीन नहीं हो जाता, एक समय कम अर्धभाग हीन यानी आधे भाग से एक समय ज्यादा, माइनस करके ब्रैकेट में अर्धभाग माइनस एक समय, यानी अर्धभाग तो माइनस हुआ एक समय प्लस हो गया,
दो गुना।
और उसके बाद हम उसके संख्यात गुणा हानि कहेंगे, दो गुना हानि कहेंगे। इसलिए एक समय वहां तक लिया। उसके पश्चात आधा होता है, दैट इज इक्वल टू दो गुणा हानि, यानी संख्यात गुणा हानि। इसलिए उसको एक समय अधिक लिया। अब आते हैं यहाँ पर 117 पेज पर। पुनः उत्कृष्ट आबाधा को करके उत्कृष्ट आयु के अर्ध भाग को बांधने पर संख्यात गुणहानि होती है ना, पहले संख्यात भागहानि होती थी, अभी संख्यात गुणहानि। पश्चात एक समय कम अर्ध भाग के बांधने पर भी संख्यात गुणहानि ही होती है। इस प्रकार संख्यात गुणहानि तब तक जाती है जब तक कि उत्कृष्ट आयु को जघन्य परिता संख्या से खंडित करने पर उसमें से एक अधिक एक खंड शेष रह जाता है। यानी जब तक वो असंख्यात वा भाग वहां तक चले आएंगे, जैसे हमने आधा किया था तब तक क्या कहा था, संख्यात वा भाग कहा था। अब यहाँ उसके बाद हमने संख्यात गुणा कहा था, तो संख्यात गुणा कब तक कहेंगे, असंख्यात गुणा जब तक नहीं हुआ तब तक, उसके बाद असंख्यात गुणा कहेंगे। यानी ऐसा अर्थ होता है कि देखो देखो जब तक यानी जघन्य परिता संख्या से खंडित किया और उतनी आयु बांधी तो हम कहेंगे असंख्यात गुणा हानि हुई, उसके एक समय पूर्व तक संख्यात गुणा हानि कहेंगे, ये उनको कहना है। अब यहाँ से असंख्यात गुणहानि ही होकर जाती हैं। यानी वो कितना हुआ, जगन्न परिता संख्यात वे भाग प्रमाण हुआ, वो यहाँ से फिर उसके वो कितना असंख्यात, बड़ा असंख्यात वे भाग हो जाएगा। यहाँ से ने जगन्य परिता संख्यात वे भाग, भाग से यहाँ से हीन हीन की ओर बढ़ना, इस प्रकार तब तक ले जाना चाहिए जब तक पूर्व कोटि के तृतीय भाग को आबाधा करके देवों में 10,000 वर्ष प्रमाण आयु को बांध कर स्थित नहीं होता है ना। पश्चात इस आयु के समान मनुष्यायु को ग्रहण कर, एक समय कम, दो समय कम इत्यादि क्रम से अधस्थिति के गलने से भवसिद्धि के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए। ऐसा करने पर पूर्व कोटि के तृतीय भाग से अधिक व एक समय कम 33 सागरूपम प्रमाण स्थान विकल्प और स्वामित्व विकल्प प्राप्त होते हैं। क्या कहना चाहते हैं, कितने विकल्प मिले उसको, कहाँ तक आए देखो। पश्चात क्या करना, इस आयु के समान मनुष्यायु को ग्रहण कर, यानी 10,000 वर्ष की मनुष्यायु ग्रहण कर, एक समय कम, दो समय कम इत्यादि क्रम से अधस्थिति के गलने से, एक एक समय कम ऐसा बनते बनते भवसिद्धि के अंतिम समय तक ले जाना चाहिए।
एक दशक तक ले जाना चाहिए।
नहीं, परंतु उनके तृतीय भाग का आबादा करके ले जाना चाहिए। अच्छा, 14वां गुणस्थान लेना क्या,
भविष्य के अंतिम समय तक।
अच्छा, यानी जब आयु की स्थिति एक समय रह जाएगी, 14वें गुणस्थान का अंतिम समय, पहले तो उसने आबादा प्लस बंधी हुई आयु ली, अब उसके बाद मनुष्यायु को ग्रहण करने, यानी उतनी मनुष्यायु कितनी, पूर्व कोटि का तृतीय भाग प्लस 10,000 वर्ष, इतनी आयु लेकर मनुष्य को लेना, फिर एक एक समय गलते हुए उसकी बात है अंतिम समय तक ले जाना। यानी सारे ही विकल्प हमें मिल गए, कितने मैक्सिमम, कितने पूर्व कोटि का तृतीय भाग अधिक प्लस 33 सागर था, परंतु उसमें हमने लास्ट में एक समय कम तक सारे विकल्प देखे। अब यहाँ 6 अनियोगों के द्वारा जीव समुदाहार को कहते, अब उसमें जीव कितने हैं उसकी बात यहाँ बताएंगे। यथा उत्कृष्ट स्थान में जीव है, बस है ये कहना, ये प्ररूपना हो गई, उससे अनंतर नीचे के स्थान में भी जीव है, इस प्रकार अनुत्कृष्ट जघन्य स्थान तक ले जाना चाहिए। अनुत्कृष्ट में से जघन्य, अब आयु के उत्कृष्ट स्थान में असंख्यात जीव है, क्योंकि नारकियों की उत्कृष्ट आयु को बांधने वाले असंख्यात जीव पाए जाते हैं, और वो भी उतनी आबादा के साथ होने चाहिए, यानी पॉसिबल है ये। इसी प्रकार सब स्थानों में से जानना चाहिए, विशेषता इतनी है कि एकेंद्रिय के योग्य स्थानों में से एक एक स्थान में अनंत जीव है। उससे नीचे के शपक श्रेणी में ही पाए जाने वाले स्थानों में संख्यात जीव है। शपक श्रेणी में ही क्यों कहा,
एक समय वाला तो शपक श्रेणी में होगा ना।
हाँ, एक समय वाला वो तो 14वें गुण स्थान में होगा, परंतु यहाँ का जो शपक श्रेणी का अंतर्मूर्त है, मिनिमम स्थान, हाँ वो छोटा वाला लिया, 13वां 14वां का छोटा काल लिया। और यहाँ कहते कि वो तो ऐसा भी ले सकते थे ना कि तो उसने जघन्य आबादा के साथ लब्धि अपर्याप्त की आयु बांधी, तो वो भी काल बड़ा हो सकता है, ये कहना चाहते हैं। ऐसा भी जीव लेता है जघन्य आयु, कौन सा कि जो स्वयं लब्धि अपर्याप्त, तो असंक्षेपाधा काल में आयु को बांधा है, अंतिम समय में बांधा है, तो उसमें तो वहां तो आबादा और कम हो गई, बाद में अवली का असंख्यात भाग रहा और आगे उसने आयु भी मिनिमम मान दी, तो वो भी जो मिनिमम अंतर्मूर्त होगा उससे भी एक स्थान छोटे हो गए।
तो
एक समय पाई जाएगी तो दूसरी बांधेगा कि नहीं, कभी ना उसके मरेगा।
अच्छा
बंद नहीं ले रहे आप, तो केवल भुज्यमान की सत्ता ले रहे हैं, है ना? एक शपक्षणी इसीलिए लिया,
हाँ,
क्योंकि उसमें बद्धायुष्क नहीं है, बस इसीलिए। अन्य जो जीव मरेंगे, भले वर्तमान आयु का एक समय रहेगा, अपन दूसरी आयु बांधेंगे ना, तो मिनिमम अंतर्मूर्त तो उसकी सत्ता रहेगी, आबाधा प्लस उसकी जगन्य आयु बांधी हुई,
उसके पश्चात शपक्षणी का।
यही तो अरविंद भाई कह रहे हैं, तो यहाँ तो शपक्षणी का काल उससे भी छोटा होगा। यहाँ लिखा है ना, देखो क्या है, उससे नीचे के
हाँ
कितने जो है, यही तो इसीलिए तो लिया, उससे नीचे क्षपक श्रेणी में ही पाए जाने वाले स्थानों में संख्यात जीव, यानी क्षपक श्रेणी में जो स्थान पाए जाते हैं वो संख्यात जीव, क्योंकि क्षपक श्रेणी में संख्यात ही जीव हो गए। पूरा नहीं लेना है, तो वो अयोगी को भी उसमें लिया होगा, अयोगी के स्थान, क्योंकि सयोगी की तो अंतर्मूर्त और वो अंतर्मूर्त बड़ा हो सकता है।
तो यहाँ पे बीच में अंतर पड़ जाएगा ना सत्ता की अपेक्षा,
किसमें
सपक श्रेणी का अंतर तो, अरे अंतर्मूर्त काल तो बहुत छोटा है, और जो एकेंद्र जीव जो मिनिमम आबादा के साथ जो मिनिमम अंतर,
अंतर कैसे पड़ेगा, सातवें गुण स्थान से ले लो ऊपर आयु बांध, नहीं नहीं वो एकेंद्री के स्थान इसके समान भी हो गए ना, उनका कहना अंतर पड़ेगा, अंतर पड़ने की जरूरत ही नहीं।
अच्छा, क्योंकि मनुष्य में एक एक,
मनुष्य में एक एक समय से बढ़ते हुए सारे स्थान पाए जाएंगे ना। अभी श्रेणी प्ररूपणा करना शक्य नहीं, क्योंकि इसके संबंध में विशिष्ट उपदेश का अभाव है, यानी आयु के बंधने वाले और वो उसके लिए कोई ऐसा उपदेश नहीं प्राप्त है। अब उत्कृष्ट स्थान संबंधी जीवों के प्रमाण से सब जीवों के, सब स्थानों के जीव कितने काल से द्वारा अपहृत होते हैं, तो उक्त प्रमाण से वे अनंत काल के द्वारा अपहृत होते हैं। इसी प्रकार त्रसकायिक प्रायोग्य सब स्थानों के जीवों की प्ररूपणा करना चाहिए। एकेंद्रिय प्रायोग्य स्थानों संबंधी जीवों के प्रमाण से सब जीव कितने काल द्वारा अपहृत होते हैं, उक्त प्रमाण से वे अंतर्मूर्त काल के द्वारा अपहृत होते हैं, इसी प्रकार सर्वत्र ले जाना चाहिए। ये जीवों की संख्या की बात है। उत्कृष्ट स्थान में जीव सब जीवों के कितने वे भाग प्रमाण हैं, वे उनके अनंत वे भाग प्रमाण हैं, क्योंकि उत्कृष्ट स्थान अभी हमने देखा ना, उत्कृष्ट आबाधा प्लस वो। इसी प्रकार त्रस प्रायोग्य सब स्थानों में कहना चाहिए, क्योंकि त्रस है ही असंख्यात और वो सभी जीवों के अनंत वे भाग प्रमाण है। वनस्पति कायिक प्रायोग्य स्थानों में सब स्थानों के जीवों के असंख्यात वे भाग प्रमाण है, क्योंकि टोटल जीव अनंत है, उसका असंख्यात भाग वनस्पति कायिकों के जीव हो गए। इसी प्रकार सर्वत्र वनस्पति कायिक प्रायोग्य स्थानों में कहना चाहिए। अब कहते हैं स्वामित्व की बात है, जगन्य स्थानों में सबसे स्तोक जीव है, उत्कृष्ट स्थान में उनसे असंख्यात गुणे जीव है, अजघन्य और अनुत्कृष्ट स्थानों में जीव उनसे अनंत गुण है। देखो जघन्य स्थान कहने से वो 14 गुण स्थान वाला अंतिम, उत्कृष्ट स्थान कहने से वो अंतर पूर्व कोटि और 33 सागर वाला, हाँ वो तो नरक वाला भी हो, देव भी सब लेना, क्योंकि देव में जाने वाले तो संख्यात हो गए,
मनुष्य तीर्थ लेना पड़ेगा ना,
मनुष्य तीर्थ सब। हाँ, और अजघन्य अनुत्कृष्ट स्थानों में जीव उनसे अनंत गुण है, क्योंकि वो एक इंद्रिय सब ले लेना। अनुत्कृष्ट स्थान में जीव उनसे विशेष अधिक है, अजघन्य और अनुत्कृष्ट ने जघन्य भी छोड़ा था और उत्कृष्ट भी छोड़ा था। अब अनुत्कृष्ट कहने से उत्कृष्ट छोड़ दिया है, और पांचवें नंबर पर अजघन्य स्थानों में जो जघन्य ने वो सारे अजघन्य जीव उनसे विशेष अधिक है। अब छह नंबर पर सब स्थानों में जीव उनसे विशेष अधिक है, इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ। अब यहीं रुकेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकनं सदा देतहु।